हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, वो पता नहीं अभी तुरंत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तब तक हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवद गीता के 9वें अध्याय में 10वां श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग मेरी बात बोलेंगे। मया अध्यक्षेण प्रकृति मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम सूयते सचराचरम सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरे शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती रहती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बार बार निर्माण और नष्ट होते रहता है। इतना कठिन हिंदी आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश में समझाता हूँ। ओ सन ऑफ कुंती, दिस मटीरियल वर्ल्ड इज वन ऑफ माई मेनी एनर्जीज मेनी पोटेंसीज एंड दिस मटीरियल वर्ल्ड इज रनिंग इन माई कंट्रोल। इन दिस मटीरियल वर्ल्ड ऑल द मूविंग एंड नॉन मूविंग थिंग्स आर अपियरिंग, दे टेक बर्थ। ना मूविंग मीन्स लाइक यू एंड मी, नॉन मूविंग मीन्स माउंटेन्स और द थिंग्स। एंड अंडर द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड एंड माई पावर दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड अगेन एंड अगेन। तात्पर्य एक्सप्लेनेशन यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि परमेश्वर इस जगत से अलग रहते हैं, लेकिन उनके ही कंट्रोल में सब कुछ कार्य होते रहता है। परमेश्वर परम इच्छामय है, यानी कि परमेश्वर इच्छा करते हैं और वो इस भौतिक दुनिया के आधार हैं। ही इज़ अ सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन इसकी सारी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। यानी कि सारी जो कार्यकलाप है वो मटेरियल वर्ल्ड जो शक्ति है उनकी, उसके द्वारा चलती रहती है। भगवद गीता में कृष्णा और भी कहते हैं कि सभी जीवों के अनेक रूप वाले, अनेक योनि वाले, अनेक स्पीशीज वाले जितने भी जीव हैं वो सबका मैं पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में जीव स्थापित करता है, उसी प्रकार से परमेश्वर अपनी नेत्रों की इच्छा, नेत्रों की दृष्टि से प्रकृति को अंदर गर्भ को निर्माण करते हैं। भगवान अपनी दृष्टि से सृष्टि का निर्माण करते हैं। हम लोगों को शरीर से कार्य करना पड़ता है जन्म देने के लिए, लेकिन भगवान केवल दृष्टि से प्रकृति को गर्भवती बनाते हैं और उसमें से जीवों का निर्माण करते हैं। और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों और योनियों में प्रकट होते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार के जो है ना, कुत्ता, बिल्ली, पंछी, मछली, देवता, मनुष्य, जितनी भी योनियाँ हैं वो उनकी इच्छा से निर्माण होते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं। अतः भगवान इस जगत में प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते हैं, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। कोई अगेन सेम बात कहिए, दृष्टिपात का मतलब है वो प्रकृति सामने है, प्रकृति को जब देखते हैं तो प्रकृति एक्टिव हो जाती है और तुरंत निर्माण का कार्य शुरू होता है। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं इसलिए परमेश्वर की ओर से क्रिया तो होती रहती है, लेकिन भौतिक जगत के प्रकट करने में वो आसक्त नहीं रहते हैं, वो अलग रहते हैं। एक उदाहरण मिलता है शास्त्रों में जो इस प्रकार से है, जब किसी व्यक्ति के सामने एक फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, लेकिन फूल और सुगंधी एक दूसरे से अलग रहते हैं, क्योंकि फूल अलग है, सुगंध अलग है, संबंध है उनका लेकिन वो अलग अलग है। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही अपने दृष्टिपात से प्रकृति को निर्माण करते हैं या उसका व्यवस्थापन करते हैं। सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति की भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति चलती रहती है और भगवान के नियंत्रण के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, फिर भी भगवान प्रकृति के सारे कार्यों से अलग रहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। वेलकम, हरे कृष्णा। सो आज 30 सितंबर है, आज कौन सा दिन है? एनीथिंग स्पेशल? आज सर्व पितृ अमावस्या। आज के दिन यानी पिछले 15 दिन से आज लास्ट दिन है। जितने भी हमारे लोग गुजर गए ना, वो सब लोगों के लिए पिंड दान करते हैं। ये बहुत बड़ा साइंस है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं जब भी हरिद्वार ऋषिकेश में गया था, कुछ दिन पहले मैं हरिद्वार में था, ऋषिकेश उत्तरकाशी, उधर पितृपक्ष शुरू हो गया था गणपति के बाद, तो सारे लोग बैठकर अपने पितरों को वहाँ पर पिंडदान कर रहे थे। और मैं वापस आया और जब मैं एक कार्तिक महात्य का किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति अपने गुजरे हुए पितरों को, यानी कि जो गुजर गए ना सब, अभी चाचा या ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, मम्मी के साइड, पापा के साइड, वो सब गुजर गए हैं, उनके लिए जो पिंडदान नहीं करता है उसको नरक में जाना पड़ता है। ऐसे एक बड़ी लिस्ट दी है, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। उसमें से एक था, पितरों को अगर पिंडदान नहीं करेगा तो वो नरक में जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पितर जो होते ना, जो मर जाते हैं, अपने कर्मों के अनुसार यही वहाँ चले जाते ना, सब लोग भगवान के पास पहुँचते नहीं हैं। कोई पितर लोग जाता है, कोई भूत लोग जाता है, कोई और कहीं जाता है, जैसा जैसा कर्म किया वैसे पहुंच जाता है। और वहाँ पर जाकर वो दुखी रहते हैं बहुत, क्योंकि वहाँ पर सुख नहीं है। अभी यहाँ से समझा आप जेल में गए तो वैसे सुखी रहेंगे, वहाँ पर तड़पते रहेंगे ना, पुकारते रहेंगे, मम्मी छुड़ा दो, भाई साहब छुड़ा दो, पिताजी जेल से रिहा करो, मैं जेल में दुखी हूँ बहुत। तो फिर यहाँ से पिताजी कुछ करेंगे ना, यहाँ पर किससे बात करेंगे, कोई वकील से बात करेंगे, कोई पुलिस से बात करेंगे, कोई पैसा दबाएंगे, कुछ करेंगे और आपको जेल से बाहर निकलने का कोशिश करेंगे। वैसे ही पिंडदान का मतलब हम लोग उनके लिए वो जेल से, वो दुख से मुक्त करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। और किस किस व्यक्ति की कोशिश सफल रहती है, जिसके पास कुछ है देने के लिए, है ना। कोई भिखारी गया, बोला मेरी मम्मी को अपनी जेल में रखा, उसको छोड़ दो, तो या तो भिखारी को भगा देंगे या तो भिखारी को भी जेल में डाल देंगे। तो उसके पास कुछ पावर नहीं ना, कुछ शक्ति नहीं है जिसके वो सुने बात। लेकिन कुछ धनी आदमी आया, बड़ी गाड़ी में उतर कर आया, बोले मेरी मम्मी को अपने अरेस्ट किया, ये लो 5 लाख रुपए लो, मम्मी को छोड़ दो, तुरंत छोड़ देंगे उसको। एटलीस्ट इंडिया में छोड़ देंगे, कम से कम बाहर के देश का मालूम नहीं मुझे। मतलब देने के लिए कुछ होना चाहिए ना, तो वो देकर लेकर उसको फ्री कर सकता है। उस तरह से जब हम पिंडदान करते हैं किसी को उसके नाम से, तो अगर भक्ति नहीं है यहाँ पर अंदर, पुण्य कर्मों का स्टॉक नहीं है, तो क्या देंगे उसको आप? उधर तो 5 लाख रुपए देने का कोई चांस नहीं है। गंगा नदी में 5 लाख बहाएंगे तो जाएगा, भीग के निकल जाएगा नीचे, उसका वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। उसका अलग करेंसी होता है, पुण्य कर्म का करेंसी होता है उधर। वो आपके अंदर कितना पाप नहीं है और कितना पुण्य है उसके ऊपर आधारित रहता है वो। जितना शुद्ध आदमी है, जितना सद आचारी है, सदवर्तनी है, वेल बिहेव्ड, हाँ, जिसके पुण्य कर्म है, जो अच्छे जीवन को जीता है, प्योर लाइफ जीता है, वो जब पिंडदान करता है तो उसका लाभ उन लोगों को होता है जो अटके हुए हैं, और वे उनके पुण्य की वजह से रिलीज होते रहते हैं। इसलिए भक्त बनना बहुत ज़रूरी है हर जगह पर। भक्त बनने पर उसका सारा जो लाभ है वो अपने लोगों को होता है। जैसे अगर कोई भक्त है और वो पिताजी का श्राद्ध करता है तो पिताजी को अच्छी गति मिलेगी। पिताजी गुजर गए और 12वां 13वां श्राद्ध कर रहा है वो, तो पुत्र अगर भक्त है उसके आग से उसको अग्नि मिलेगी तो उसकी गति अच्छी दिशा में होगी, है ना। हमारा कैसा है, एटम बॉम्ब तो हमारे पास है लेकिन लॉन्चर अगर सही नहीं होगा, लॉन्चर है ना, लॉन्च करते हैं ना उसको, तो क्या होगा, उधर ही गिर जाएगा वो, तुम्हारे सामने गिर के फट जाएगा वो। लॉन्चर सही रहेगा तो दूर जाके गिरेगा जहाँ पर डालना है। लॉन्चर भी इंपॉर्टेंट है, आपको एटम बॉम्ब तो है लेकिन तुम्हारे सर पे फट सकता है वो अगर तुम्हारे पास लॉन्चर सही नहीं है, एम आई राइट। अगर आपको पास बहुत बड़ा तीर है, तीर एरो, लेकिन धनुष आपने अच्छी तरह खींचा नहीं है तो तुम्हारे पैर के पास गिर जाएगा वो लेकिन खींच के डालेंगे जोर लगा के तो दूर जाएगा वो। उस तरह से लॉन्चर जो है ना वो आपका पुण्य कर्म है। इसलिए मनुष्य को भगवान का भक्त बनना बहुत ज़रूरी है। आप बोलेंगे यार वो हम लोग तो ऑलरेडी बने हुए हैं, बहुत दिन से जप करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे बोले 20 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग बोलेंगे 5 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग जब से एडमिशन लिया नर्सिंग स्कूल में तब से कर रहे हैं, तब से भक्त बने हम लोग। कोई नया क्या बनना है, और नया यही है कि अभी हम लोग कुछ परसेंट के भक्त हैं, 10% भक्त हैं, और 10% जब भक्त बनते हैं तो 90% माया के भक्त रहते हैं, है ना। 100% भगवान के भक्त बनेंगे ना तो बढ़िया है, क्योंकि अभी तक 100% नहीं, हम लोग बटे हुए हैं, डिवाइडेड। कुछ ध्यान इधर भी रखा है, कुछ ध्यान इधर भी रखा है, जैसा अच्छा लगेगा वैसे इधर उधर, ऐसे सी सॉ तो जब 100% भक्त बनेंगे ना तो भगवान हमारी ओर देखेंगे। वैसे क्रिकेट तो दुनिया में बहुत खेलते हैं, सब लोग खेलते हैं, गली गली में क्रिकेट खेलते हैं, गली गली में क्या, घर के अंदर हॉल के अंदर भी खेलते क्रिकेट, लेकिन सबका नाम पेपर में नहीं आता है ना। जो टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी मारता है उसका पेपर में फोटो आता है, उसको नोट करते हैं, अरे ये तो इंडिया के टेस्ट में अभी फर्स्ट में सेंचुरी मारा उसने। वैसे इस भक्त लोग बहुत रहते हैं दुनिया में, लेकिन भगवान उसको देखते हैं जो सेंचुरी मारने वाला है। तो ऐसा हमको भक्त बनना चाहिए। तो आज का लास्ट दिन है, आज के दिन जिन्होंने कुछ किया नहीं है, पहले भूल गए करने, टाइम नहीं था, वो सब लोग अपने पितरों को पिंडदान करते हैं। तो आप लोग बोलेंगे हमने तो किया नहीं है, भूल गए सब। मन में भी आपके गुजरे हुए रिश्तेदारों को याद करके अगर हम जल भी अर्पण करते हैं बकेट के अंदर, हाँ समझो, गंगा जी का याद करके, या जमुना जी का याद करके, या गोमती का याद करके, या गोदावरी का याद करके, सरयू, गोदावरी, सिंधु, कावेरी, नर्मदा, इसमें से किसी भी नदी की स्मरण करके बकेट से जल निकाल कर अगर अर्पण करेंगे ना उनके नाम से, तो भी उनको शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि वो जल को और बकेट को इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आपकी भावना को है, यहाँ पर कितना स्टॉक है आपके अंदर, वो दे रहे हैं आप। याद करने का मतलब क्या है, हम आप पर प्रेम करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। पितर जो थे ना, पितर जो वहाँ पर सफ़र होते रहते ना, वो आपकी प्रार्थना के लिए तड़पते रहते हैं। शास्त्र में लिखा है दोज़ हू डिपार्ट फ्रॉम हियर दे आर हैंकरिंग फॉर योर प्रेयर्स कॉन्स्टेंटली, क्योंकि आपका पैसा आपका पोजिशन पावर उनको हेल्प नहीं कर सकता है, बट आप प्रेयर करेंगे तो उनको लाभ होगा उसका। तो प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेयर तब निकलती है जब आपका जीवन शुद्ध होता है। अगर आपका जीवन शुद्ध नहीं है, अपवित्र है, पापी जीवन है, तो कैसे प्रेयर निकलेगा? प्रेयर कौन कर सकता है? हु कैन डू प्रेयर? टेल मी, ओनली योर हार्ट इज वेरी प्योर हु कैन डू प्रेयर्स। प्रेयर कोई साधारण चीज़ नहीं है, इसलिए प्रेयर करने को सीखना चाहिए। भक्ति युद्धांत हॉस्पिटल इसके लिए बनाया गया है ताकि आप लोग सब लोग प्रेयर करना सीखें, हाउ टू डू प्रेयर्स, और अपने प्रेयर का दूसरे व्यक्ति को लाभ कैसे मिलना चाहिए ये भी यहाँ पर हम सिखाते हैं। हाउ टू मेक अदर्स बेनिफिट बाय योर प्रेयर्स, हाउ टू मेक योर प्रेयर स्ट्रांग एंड बेनिफिट अदर्स बाय योर प्रेयर्स। क्योंकि आप लोगों के पास सब लोग दुखी लोग ही आते हैं पेशेंट बनकर, है ना? कोई खुशियाँ मनाने के लिए दिवाली मनाने के लिए यहाँ पर नहीं आते। दिवाली में डिस्चार्ज चाहते हो, सेंड होम, वो घर पर रहना है, तो यहाँ पर कोई एंजॉय करने को नहीं आता, सब लोग दुखी आते हैं। तो दुखी लोगों के लिए आपकी प्रार्थना बहुत पावरफुल है। आप नर्सिंग कर रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो, करते करते अगर आपके मन में प्रार्थना आती है उनके लिए, प्रेयर आती है, तो उनका जो अच्छा होना जो है वो जल्दी अच्छे हो जाते हैं। इतनी शक्ति है प्रार्थना के अंदर। तो हमारा हृदय जैसे हमेशा गुस्सा द्वेष ऐसे भावना से भरा रहता है, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक हिम ऑल्सो, ऐसे भावना से भरा रहता है, तो प्रेयर कैसा निकलेगी? तो प्रेयर निकलना चाहिए। हाँ, तो आज का दिन अगर हम श्राद्ध करने के लिए समर्थ भी नहीं है समझो, फिर भी हमारे गुजरे हुए रिश्तेदारों के लिए आज हमको प्रार्थना करना चाहिए। तो मैंने गंगा जी में उतर कर, बहुत आइस कोल्ड फ्रीजिंग वाटर था और इतना स्पीड था उसको, बाप रे, एक कदम आगे आप डालेंगे तो आप सीधा बह जाएंगे, इतना तेज पानी, वो भी ठंडा फ्रीजिंग, हाथ डालेंगे तो हाथ का स्पर्श खत्म हो जाएगा। उतने पानी में खड़े रहकर सारे पितरों को याद किया हमने, माँ के साइड के, पिताजी के साइड के, हाँ, बीवी के साइड के, सारे लोगों को, तीनों लोगों के जितने भी गुजरे हुए लोग सबको याद, नाम करके याद करके एक एक हरे कृष्ण महामंत्र करके अर्घ्य अर्पण किया, हाँ, पिंडदान मतलब प्रार्थना किया उनके लिए। तो ये हो गया सर्वपितृ अमावस्या। कल से क्या शुरू हो रहा है? नवरात्रि, सबको पता है, लेकिन यहाँ पर नवरात्रि जिसके लिए करते हैं उसका पोजीशन क्या है यहाँ पर एक्सप्लेन किया भगवान ने, है ना? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूरते सचराचरम, यानी कि इस दुनिया में चलने वाले जीव बहुत सारे हैं, न चलने वाले भी जीव हैं बहुत, इससे सृष्टि बनी हुई है। सृष्टि किससे बनी हुई है? एक तो चलने वाले जीव है और एक न चलने वाले जीव, जैसे पेड़ चलता नहीं है लेकिन वो भी जीव है। चर अचर सृष्टि को नियंत्रित करती है प्रकृति, और प्रकृति भगवान की शक्ति है, क्योंकि तो भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में, मेरे रूल में, मेरे नियंत्रण में प्रकृति कार्य करती है। मया अध्यक्षेण प्रकृति, अध्यक्ष का अर्थ है अधि अक्ष, यानी जिसकी नज़र उसके ऊपर है। एक तरह से अध्यक्ष का शब्द और मतलब होता है सुपरवाइजर, वो क्या करता है? आप पर नज़र रखता है, आप क्या कर रहे हो, ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसको अधि अक्ष यानी अध्यक्ष कहते हैं। और मया अध्यक्ष, मेरी नज़र जिस पर है वो है प्रकृति, और वो प्रकृति का ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूप अपि चचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो प्रकृति क्या करती है? सृष्टि यानी निर्माण करती है। सृष्टि का मतलब क्या है? सृजन यानी क्रिएशन। प्रकृति क्या करती है? मेंटेनेंस। सृष्टि स्थिति, स्थिति को बनाए रखती है, और प्रलय यानी समय पर नष्ट भी करती है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन और शक्ति, अपनी शक्ति से अपने बल से वो सृष्टि का निर्माण मेंटेनेंस और प्रलय नाश करती रहती है। छाए व यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, उसका नाम क्या है? उसका नाम दुर्गा है। और छाए व यस्य, यस्य मतलब क्या? किसका? भगवान का। यस्य यानी उनकी, उनकी छाया, वो कौन है? भगवान। छाए व यस्य, उनकी वो छाया है, उनकी छाया के रूप में काम करती है। भुवनानी विभर्ति दुर्गा, भुवनानी मतलब ये भुवन जो है आपके जिसमें आप जी रहे हो उसकी वो देवी है। और भुवन को क्या कहा गया है? दुर्ग, दुर्ग यानी किला। किला में कैसा होता है? सब बंद होता है, उसको होता है बुरुज, सब जगह से बंद होता है वो, एक एंट्री होती है और किले का होता है किलेदार जो किले को कंट्रोल करता है। तो इस दुर्ग को कंट्रोल करने वाली कौन है? दुर्गा देवी। इच्छा अनुरूप अपि चेष्ट तेसा, भगवान की इच्छा के अनुरूप ही वो कार्य करती है, चेष्टा करती है मतलब प्रयत्न करती रहती है। इच्छा अनुरूप अपि चेष्ट तेसा, भगवान की इच्छा के अनुसार वो चेष्टा यानी प्रयत्न करती रहती है, कार्य करती रहती है। ऐसे देवी को हम प्रणाम करते हैं। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब लोग कौन कौन है, इनका पोजीशन क्या है। ऐसे बोलेंगे सब लोग सेम है, एक घर में जाएंगे सात लोग है मतलब सब लोग सेम है, माता पिता बच्चे बच्ची सब सब सेम है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इनके पास जाएंगे तो ये भोजन खिलाएंगे, इनके पास जाएंगे तो वो कुछ और कुछ करेंगे, नौकरी करके पैसा कमाएंगे, सब लोग सेम कैसे हैं? हमारे घर में सब अलग अलग है और भगवान के घर में सब सेम है, एवरीबॉडी सेम, हाउ इट इज़ पॉसिबल? भगवान का भी मैनेजमेंट है, भगवान भी मैनेज करते हैं तो अलग अलग लोगों को अलग अलग पोस्ट देते हैं, अलग अलग पोस्ट देकर अलग अलग पावर देते हैं, अलग अलग पावर देकर वो अपने अपने काम करके सृष्टि को चलाते हैं, ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, उनके अंडर उनके असिस्टेंट हैं, सब बने हुए हैं सब लोग। इंद्र जो है वो वर्षा करते हैं, वरुण देव जो वर्षा करके पानी जमा होता है, हाँ सरोवर तालाब नदियाँ उनका मेंटेन करते हैं। पृथ्वी देवी उपज करती है ना, आपको फल फूल धान्य सब देती है, वो अपना कार्य कर रही है, सपोर्ट भी करती है, आधार देती है। वायुदेव आपको हवा देता है। कितने लोगों का अलग अलग काम है और हम कैसे वो सब सेम है? आप अगर यहाँ से गवर्नमेंट के रेशन के दुकान रेशन के ऑफिस में जाएंगे तो आधार कार्ड मिलेगा क्या आपको? रेशन के ऑफिस में रेशन कार्ड मिलेगा, आधार कार्ड के ऑफिस में आधार कार्ड मिलेगा, वे आधार कार्ड में जाके पासपोर्ट मांगेंगे तो पासपोर्ट मिलेगा क्या आपको उधर? नहीं मिलेगा। नहीं नहीं सब ऑफिस सेम है, गवर्नमेंट के ऑफिस है, आप कहीं भी अप्लाई करो आप सब कुछ मिलेगा आपको, ऐसा होता है क्या? कपड़े की दुकान में जाएंगे तो बर्तन कैसे मिलेंगे उधर? और आपके पास गैस कुकर है क्या? बोले अरे रेमंड का दुकान है, कपड़े बेचते हैं हम लोग यहाँ पर। नहीं नहीं वो मुझे लगा दुकान खोली तो गैस भी मिलेगा, ऐसा नहीं होता है ना। वैसे ही हर एक व्यक्ति अलग अलग है, उनका अलग अलग कार्य है। तो ये जो देवी है जो भगवान की नियंत्रण में कार्य करती है, प्रकृति यानी नेचर को चलाती है, वो भगवान की छाया है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, एक्सटर्नल पोटेंसी है, और वो भगवान के निर्देश के अनुसार इस दुनिया को चलाती है। वो भगवान की मतलब सर्वे सर्वा नहीं है वो, शी इज़ नॉट अ सुप्रीम कंट्रोलर, शी इज़ असिस्टिंग समबडी, भगवान के निर्देश में इस दुनिया को चलाती है। इच्छानुरूप अपि चेष्ट तेसा, भगवान की इच्छा के अनुसार वो दुनिया को चलाती है। तो उस देवी की हम इस नौ दिन में पूजा करते हैं, और उस देवी के भी बहुत रूप हैं, अलग अलग रूप हैं, और अलग अलग रूप से अलग अलग कार्य करती रही वो। अभी पेपर में अभी आप जाएंगे वृंदावन धाएंगे ना, वृंदावन के न्यूज़पेपर में हर दिन उस देवी का वर्णन आएगा फोटो के साथ में, उसका नाम उसकी शक्तियाँ उसका कार्य सबका वर्णन आएगा, और आज उसकी पूजा होगी इसका भी डिस्क्रिप्शन आएगा। मुंबई में इतना सब नहीं होता है, वृंदावन धाम में अमर उजाला नाम का पेपर है, उसके अंदर हर रोज़ हर एक त्यौहार के बारे में डिटेल जानकारी आती है। अब मैं उसको बड़े संभाल के रखता हूँ, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन भी कौन देता है आजकल, किसको पता है कौन क्या है। हमारा मतलब क्या, नवरात्रि मतलब डांस करने का, रात को सज धज के जाने का कम से कम कपड़ा पहन के, और मम्मी को बोलने का जाना है मुझे अभी गरबा खेलने के लिए, 10 बजे गायब हो जाने का, और दिसंबर में गर्भपात करने के लिए हॉस्पिटल में नंबर देने का। ये आज का नवरात्रि है, लेकिन नवरात्रि का व्रत जो है ना बहुत पावरफुल व्रत है, लोग उसको समझते नहीं हैं कि वो नवरात्रि के दिन अगर ऐसे गलत कार्य करते हैं तो नरक में क्या स्पेशल नरक बनाना पड़ेगा अगर ऐसे करने वाले लोगों के लिए। जो नवरात्रि देवी को प्रसन्न करके देवी की कृपा लेकर भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए बनाई गई है, वो नवरात्रि के अंदर अगर संभोग करते लोग सेक्स करते हैं तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे वो। लेकिन ज्ञान देने वाला कौन है? मम्मी पापा ने भी वही किया था और बच्चे भी वही कर रहे हैं, क्या करेंगे? बोले क्या करेंगे, बच्चे सुनते नहीं हैं, 50,000 का ड्रेस लाया है, अभी ड्रेस पहन के जाएगी और फिर गरबा करेगी। ये एक दृश्य है उसका, हाँ गलत विकृत दृश्य है। विकृत यानी परवर्टेड सीन, जो नहीं होना चाहिए, लेकिन कलयुग के प्रभाव से ये सब हो रहा है। वो गरबा में नाच डांस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने संस्कृति को, अपने मर्यादा को संभालते हुए लेडीज़ के साइड में आप डांस कर सकते हो, देवी की प्रसन्नता के लिए डांस कर सकते हो। हम भी नाचते हैं ना हरे कृष्ण कीर्तन में, तो हमारा डांस कितना अच्छा है दिखाने के लिए नाचते नहीं हम लोग। जब हम नृत्य करते हैं हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए, तो भगवान को संतुष्ट करने के लिए वो डांस करते हैं। वैसे गरबा का जो रास गरबा कहते हैं, वो भी देवी को, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, अपना रूप दिखाने के लिए, अपना फैशन दिखाने के लिए, अपना पैसा दिखाने के लिए और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं करते हैं उसको। लेकिन आज तो वही हो रहा है, क्योंकि संस्कार नहीं है लोगों को, लोगों को मर्यादा नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, घर में कोई समझा नहीं रहा है उनको, और ना कोई अच्छा उदाहरण है उनके सामने कि मेरी मम्मी ने ऐसा ऐसा किया था तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो कम से कम हम विशेष प्रभात जागृति में आपको इतना ज़रूर बता सकते हैं कि ये देवी कौन है, इस देवी का उत्सव का मतलब क्या है, इसे क्यों करना चाहिए। लोग उसको 9 दिन उपवास रखते हैं, मालूम है आपको, 9 दिन उपवास रखते हैं और रोज़ देवी की पूजा करते हैं, और क्या प्रार्थना देवी से करते हैं, अच्छा पति मिले, अच्छी पत्नी मिले, जल्दी मेरी गाड़ी नई आ जाए, हाँ मुझे पुत्र प्राप्ति हो, पुत्री प्राप्ति हो, मुझे घर बन जाए, ये सब के लिए देवी की पूजा नहीं है। ये तो आपके कर्मों के अनुसार आएगा, जितना कर्म है उतना ही आएगा, देवी के पास अलग एप्लीकेशन देके अलग नहीं मिलेगा आपको। देवी के हाथ में क्या है, आपका हिसाब किताब देखेगी वो, उसके अनुसार आपको फल देगी। उसके हाथ में हिसाब किताब चेंज करने का अलाउड नहीं है, वो दिए हुए फाइल में चेंजेस नहीं कर सकती है। उसके पास जितने फाइल आए हैं वो देखेगी, उसके अनुसार उसका रिजल्ट करेगी, वो देखेगी आपके पेपर में, अरे ये तो कमी है, ये नहीं हो सकता है, पूरा करो फिर होगा। तो देवी आपका जो रिकॉर्ड है उसको चेंज नहीं कर सकती है, जो रिकॉर्ड है उसको उसका फल दे सकती है बस। अगर रिकॉर्ड चेंज करना है तो किसके पास जाना है आपको, सुप्रीम अथॉरिटी। आपको फांसी की शिक्षा हो गई है, सारे कोर्ट ने आपको फांसी की शिक्षा दे दी है, तो आप कहीं भी वापस कोर्ट में जाओगे तो बोलेंगे सॉरी इसका ऑलरेडी रिजल्ट हो चुका है, तो फिर कहाँ जाएंगे आप, प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, राष्ट्रपति, उसी को केवल अधिकार है उसको कैंसिल करने का, पोस्टपोन करने का, जो भी कुछ करने का। बाकी सब जगह दरवाजे ठोकेंगे आप तो आपकी फांसी की शिक्षा माफी नहीं हो सकती है। उसी तरह से अगर आपके जीवन के रिकॉर्ड के अंदर, फाइल के अंदर कुछ चेंज करना है तो देवी देवताओं के पास जाके कुछ नहीं होगा, आपको केवल मुकुंद यानी कृष्ण के पास जाना होगा, वो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो आपके फाइल में कुछ डिलीट कुछ कर सकते हैं, उनकी इच्छा होगी, आपने उनको अपनी भक्ति से कन्विंस किया तो, बाकी किसी के अंदर नहीं है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरे निर्देश में प्रकृति चलती है। तो इसलिए किसके पास क्या मांगना है वो भी पता होना चाहिए। सबके पास जाके सब कुछ मांगेंगे तो सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, जिसका जितना कैपेसिटी है उतना देगा वो। अगर मेरे पास आएंगे बोलेंगे सर 1 करोड़ रुपए दो, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास खुद के पास नहीं है, मैं कैसे दूंगा। सर मेरे को 5,000 रुपए दो, मेरे को फी भरना है, बहुत तकलीफ है मुझे, दे सकता हूँ, जो है वही दे सकता हूँ, जो नहीं है उसका नाटक नहीं कर सकता हूँ। सर मेरे बर्थडे में मुझे मर्सिडीज गाड़ी प्रेजेंट दो, तो बोले मेरे पास खुद के पास नहीं है। हिरण्यकश्यपु ऐसे ब्रह्मा जी के पास गए थे तो ब्रह्मा ने बोला अरे इतना कठोर तपस्या कर रहे हो, क्या चाहते हो, वरदान मांगो, तो बोलते मुझे अमर कर दो, तो ब्रह्मा ने क्या उत्तर दिया, आई एम सॉरी मैं आपको अमर नहीं बना सकता क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो कैसे आपको अमर बनाऊंगा। तो मतलब रॉन्ग नंबर लग गया ना उनका, उन्होंने जो पूछा वो रॉन्ग नंबर में पूछा, तो उन्होंने कहा ये नहीं कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, आपके पास क्या क्या अधिकार है उसका लिस्ट बना देते हैं, मैं शस्त्र से नहीं मरूंगा, अस्त्र से नहीं मरूंगा, सारा हाँ ये मैं आपको सैंक्शन, ये मेरे अधिकार में। लेकिन बाद में क्या हुआ, इतना सारा लिस्ट सैंक्शन किया उन्होंने, साइन किया, उसके बाद साइन सील्ड एंड डिलीवर्ड, उसके बाद क्या हुआ, भगवान आए, सारे उसका कंडीशन फॉलो किया, फिर भी उसको मार डाला सारा कंडीशन फॉलो किया, जो ब्रह्मा ने वरदान दिया था सबको रिस्पेक्ट रखते हुए, कोई भी उनका वरदान न तोड़ते हुए भगवान ने उसको मार डाला। ब्रह्मा जी देखते रह गए, अरे बाप रे इतना लंबा लिस्ट था, मैंने सैंक्शन किया था फिर भी फेल हो गया वो ब्रह्मा जी की पत्नी भी आई वहां पर, अरे ब्रह्मा जी महाराज पतिदेव आपका भक्त को इतना वरदान दिया था आपने, इतना आपका सैंक्शन फेल हो रहा है पूरा, तो बोलते बराबर है वो तो सुप्रीम है, मैं सुप्रीम नहीं हूँ, मैं भी पावरफुल हूँ, लेकिन मेरे ऊपर भी पावरफुल वो है, वो सब कुछ कर सकते हैं, उन्होंने करके भी दिखाया। जब रावण को राम ने बाण मारा, पार्वती शिवजी का भाग के आई, बोली अरे शंकर जी महाराज आपने इतने इसके इतने वरदान दिए थे उसको, जब उसने कैलाश उठाया था 100 बार तो उसको कितने वरदान दिए थे आपने, क्या हो रहा है, देखो उसका मर रहा है वो वृद्ध। तो बोलते हैं जिनको भगवान को मारना है उसको कौन बचाएगा, और जिसको भगवान को बचाना है उसको कौन मार सकता है। भगवान को प्रहलाद को बचाना था, इतना सारा कोशिश किया, हर शस्त्र हर अस्त्र हर तरीके से उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद को तो कुछ भी नहीं हुआ, बाल भी बाका नहीं हुआ उसका, एक बाल भी बाका नहीं हुआ उसका। तो भगवान सुप्रीम है, इसलिए किसके पास क्या मांगना चाहिए पता होना चाहिए, आपकी क्या रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट को लेकर आप जानते हैं ना कि आप ना इनके पास मत जाओ, उनके पास जाओ, वो आप कर सकते हैं। आप ये इधर भी जानते हैं ना, हॉस्पिटल में भी जानते हैं और अपने गवर्नमेंट में भी जानते हैं, सब जानते हैं किसका पावर किसके पास है, आप जानते हो, बराबर वहाँ पहुँचता है आदमी जो कर सकता है। इसलिए देवी के पास जाके ऐसा मत बोलना कि मेरी पीड़ा कम हो जाए, कष्ट कम हो जाए, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना अधिकार नहीं है। तो क्या उनके पास अधिकार है? उनके पास आपको भक्ति देने का अधिकार है। दुर्भाग्य से शंकर जी के पास, सरस्वती के पास, दुर्गा देवी के पास, गणेश जी के पास कोई भी जाकर भक्ति नहीं मांगता है, इतनी लाइन लगी रहती है। दुनिया के सबसे बड़े रिचेस्ट मंदिर में गणेश जी का मंदिर है, तिरुपति का मंदिर है, हाँ गुरुवायूर का मंदिर है, श्रीरंगम का मंदिर है, लेकिन लोग वहाँ जाकर भक्ति नहीं मांगते हैं, बहुत कम लोग मांगते हैं, खास करके देवताओं के पास जाकर खाली पैसा मांगते हैं, पति पत्नी बच्चा डिग्री ये वो गाड़ी घर ये सब चाह मांगते हैं। बड़ी लिस्ट रहती है उनकी, हर मंगलवार को नई लिस्ट रहती है, हर शुक्रवार को नई लिस्ट रहती है, हर एक जगह सबमिट करते हैं उसको, और सालों साल जाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी होता है पूरा, लेकिन बहुत सारा नहीं होता है पूरा, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि इनके पास क्या मांगना चाहिए और क्या दे सकती है। तो देवी के पास एक शक्ति है, वो आपको भक्ति दे सकती है, और देवी के पास एक और शक्ति है, अगर आप यहाँ पर अच्छे भक्त बन के रहे तो आपको वो डिस्काउंट दे सकती है थोड़ा सा। कैसे होता है ना जेल में, कैसा होता है, तुम जेल में आपको भर्ती कर दिया और सजा दे दिया आपको 6 महीने के लिए पत्थर तोड़ना है, लेकिन जेल में आप अच्छे रहे, किसी का झगड़ा नहीं किया, टाइम पे गए, टाइम पे काम किया, टाइम पे सोए, टाइम पे उठे, किसी को इंसल्ट नहीं किया, किसी को हर्ट नहीं किया, और आपका रिकॉर्ड अच्छा है, तो जेलर फिर आपका नाम लिख के देगा कि इसको ना 1 महीना डिस्काउंट दे दो। तो उसका रिकॉर्ड देख के उसका जब एप्लीकेशन आता है जेलर की तरफ से, तो जेलर का अधिकारी बड़ा जो होता है वो उसको 1 महीना डिस्काउंट मान्य कर सकता है, लेकिन सज़ा कैंसिल करो तो नहीं कर सकते हो, फिर सज़ा ही मत दो, अभी फ्री कर दो तो नहीं कर सकते, आपको जेल में आना पड़ेगा, कुछ दिन सज़ा भोगनी पड़ेगी, आपका रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, रिकॉर्ड आपका अच्छा होगा तो मैं अप्लाई करूँगी, फिर आप फ्री हो सकते। तो हर एक अपना अपना अधिकार फिक्स है, आप बोलने से उनका अधिकार बढ़ता नहीं, नहीं नहीं साहब आप कर सकते हो सर, आप सब कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकता मैं, नहीं नहीं आप सब इतने पावरफुल हो, आप इतना पोजीशन है आपका, आप कर सकते हो, नहीं कर सकता मैं, बोला ना आपको मैं नहीं कर सकता। तो ये मूर्खता है, क्योंकि अज्ञान के कारण हम लोग सबके सब पंगते रहते हैं। इसलिए आप देवी का पोजीशन क्या है, भगवान की वो बहिरंगा शक्ति है, अगर वो बहिरंगा शक्ति तो अंतरंगा कौन है, तो अंतरंगा राधा रानी है, वो भगवान के धाम में उनकी लीलाओं को सहायता करती रहती है। और दुर्गा देवी जो है उनका कंट्रोल किधर है, जहाँ पर हमारे तुम्हारे जैसे लोग कर्मों को करते हुए कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेते हैं, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में बंद रहते हैं, बूढ़े बीमार होने के जीव में जन्म लेते हैं, है ना, हम लोग सब लोग कैसे हैं, जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, दुखों का कर्मों का दुख भोगते रहते हैं। इन लोगों को कहते हैं दुर्ग में रखते हैं, उसमें इस वर्ल्ड में शरीर के जेल में रखते हैं उनको, वो लोगों के कंट्रोल में दुर्गा देवी रहती है। जो भगवान के भक्त हैं वो लीला कर रहे हैं वृंदावन में, उनका कोई कनेक्शन नहीं उनके साथ, उनको कंट्रोल नहीं कर सकती वो। भगवान के जो भक्त होते हैं वो साक्षात दैवी ऐशी गुणमयी मम माया दुरात्यया, और एक भगवान ने माया का वर्णन दिया है, ये मेरी माया जो है, माया यानी दुर्गा देवी, माया जो शक्ति है बहुत पावरफुल है, दुरात्यया इसको आप पार नहीं कर सकते। दैवी ऐशी गुणमयी मम माया, मतलब मेरी शक्ति है ये, भगवान बोलते हैं मम यानी मेरी, और दैवी है, डिवाइन है बहुत, और बहुत दिव्य गुण है उसके अंदर, उसको पार करना किसी के बस में नहीं है, लेकिन माँ में वैश्यसि प्रपद्यन्ते हाँ मायाम एताम तरंति ते, मेरे को जो शरण आएगा तो माया के कंट्रोल से निकल जाएगा वो, जो माया ने उसको पकड़ के रखा है ऐसे तो छोड़ देंगे माया उसको, अगर वो मैं भगवान की शरण में गया तो। ये उसका सीक्रेट है। इसका और एक आपको एग्जांपल देता हूँ, तुम जो आप मेरे बंगले पे आते हो गांव में, जैसे अंदर आते हो तो एक बड़ा कुत्ता गुर्र करके आपका भौ 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 कर रहा है, तो आप कितना भी ट्राई करेंगे ना तो उसको पार नहीं कर सकते हो, इतना ट्रेनिंग देके रखा है उसको, वो आपको छोड़ेगा नहीं अंदर, चांस ही नहीं है। उसका गुर्राने का आवाज़ देखे आप पीछे हट जाओगे, आगे जाने का सवाल ही नहीं उठता है। अरे कहीं गलती से दांत लग गया उसका तो गए काम से, तो बहुत देर आप ट्राई करते रहोगे ऐसा ऐसा हैट हैट करोगे आगे पीछे जाओगे, लेकिन वो तो बोला फुल ट्रेंड है, वो किसी को देने आने को देगा ही नहीं वो, तो आप क्या करेंगे? बोले तू बेटा भुगते रह जा, अभी एक मिनट देखता हूँ तेरे को, पीछे जाके मोबाइल निकालेंगे, झाड़ के पास जाएंगे, मोबाइल खोलेंगे और मुझे फ़ोन करेंगे, प्रभु जी मुझे घर पे आना है, मैं आप आ गया हूँ लेकिन तुम्हारा कुत्ता भोंक रहा है। बोले कोई बात नहीं अभी रुको एक मिनट मैं आता हूँ। तुरंत वो नीचे आएगा फ़ोन लेके, बोलेगा टॉमी हट सिट देयर, टॉनी बाजू में बैठ जाएगा एकदम रॉयली, टॉमी को नज़र मारते हुए आप रुबाब से घंटा जा सकते हो, है ना? क्या मतलब हो उसका? वही टॉमी जो आपको एक कदम भी आगे बढ़ने को नहीं दे रहा था, वो चुपचाप बैठ के दुम हिलाते हुए कोई कोई करते हुए आपको सम्मान के साथ अंदर जाने को दे रहा है, क्योंकि आपने मालिक की शरण ले ली है। यू हैव सरेंडर टू द मालिक, जो कुत्ते का बॉस है, कुत्ते का मालिक है, उसकी शरण आपने ली है। जैसे आपने कुत्ते के मालिक की शरण ली है, कुत्ते का कंट्रोल कैंसल, आपका रास्ता खुला, वो भी आप एकदम कुत्ते को नज़र देते हुए जा रहे हैं। तुमने मुझे रोका था ना, अभी रोके दिखा, ऐसा है वो। उसी तरह से जो माया देवी है, दुर्गा देवी है, वो आपको बांध के रखती है त्रिगुण के अंदर, आपके जितने कर्म है उसको फल आपको देना ही देती है, वो दंड देना काम है उसका, जितने भी बुरे कर्म किए उसके फटके देती है वो आपको। और आप बोले बचाओ बचाओ, बोले क्या कर सकते हैं, तुमने तो कर्म किया है उसका फल देना मेरा काम है, मेरा ड्यूटी है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन मेरा वही है, हर एक का फाइल निकालना और उसका अनुसार उसको दंड देना है ना, ऐसा होता है कि नहीं? शासक है वो, प्रशासक। लेकिन जैसे बोलेंगे हे भगवान दया करो बचाओ, भगवान की शरण लेंगे तो मायाम इतम तरंती थे, तुरंत माया आपको रिलीज कर देगी, तुरंत बोलेगी हरे कृष्णा थैंक यू, आपने अच्छा काम किया, मेरे मालिक के पास आप गए बहुत अच्छा लगा मुझे। वो ऐसा सोचती नहीं अरे एक निकल गया मेरे हाथ से, पकड़ो उसको भागो उसके पीछे, नहीं, जो व्यक्ति उनके मालिक के शरण में जाता है उसे बड़ी खुशी होती है, एक तो सुधर गया। जैसे जेलर जब देखता है कि जेल के अंदर का जो कैदी है वो छूट कर जा रहा है, तो जेलर जाके उसको पकड़ता नहीं वापस, अब बोले अच्छा है इसमें रहना अच्छा नहीं है, मेरा काम भी कितना कठिन है, दंड देते रहना है मुझे, उससे अच्छा अच्छा काम करके निकल गया तो शहर में जाके रह सकता है वो। वैसे ही दुर्गा देवी के कंट्रोल से कोई निकल गया भगवान के शरण लेकर, तो दुर्गा देवी बड़ी खुश होती है, कृपा करती है उसके ऊपर, बेटा बने रहो अच्छी तरह से, दोबारा मेरे अंडर मत आना, क्योंकि मेरे अंडर तो कष्ट होगा आपको, मेरा काम ही वही है, मैं आपको प्रेम करने होने पर भी आपका फाइल देके मुझे कष्ट देना पड़ेगा आपको, इसलिए उनके चरणों में बने रहो। और भगवान क्या करते हैं, ऐसे उनके हाथ से छूटे हुए सबकी फाइल उनके पास मंगा लेते हैं, बोले अभी तुम्हारे पास सब नहीं है ना, अभी तुम तो आईसीयू से अगर वार्ड में शिफ्ट हो गया तो आईसीयू के लोग वार्ड में अपनी फाइल रखेंगे क्या, उसकी रखते क्या आप लोग ऐसे? नहीं ना, पेशेंट के साथ उसकी फाइल भी जनरल वार्ड में ट्रांसफर होते हुए ट्रांसफर हो जाती है, और वो जनरल वार्ड की सिस्टर जो है वो फिर अपने हाथ में लेती है, आगे का कार्यवाही वो सिस्टर करती है, वहाँ की सिस्टर फ़ोन नहीं करती है तुमने उसको ही दिया क्या वो दिया क्या, सिस्टर अपना आईसीयू का काम देखो, मेरा काम अभी मेरे अंडर आ गया है, मैं देखती हूँ क्या करना है। उसी तरह से अगर दुर्गा देवी की जेल से आप निकल गए, भगवान के शरण में गए, तुरंत आपकी फाइल भगवान मंगा लेते हैं, और वो जो व्यक्ति है भगवान नाम के, वो आपके फाइल में चेंजेस कर सकते हैं, जितना चाहिए रखना उतना रख सकते हैं, बाकी डिलीट मार सकते हैं, आपको कम समय में फ्री कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, क्योंकि उनके हाथ में सारा अधिकार है, सारा पासवर्ड उनके हाथ में है, एनीथिंग ही कैन डू। और दुर्गा देवी आपको आशीर्वाद देती है। जिनके चरणों में मैं भी बैठी हुई हूँ उनके चरणों में आप जाओगे, वेरी गुड, हम लोग साथ में रहेंगे उनके चरणों में। वही सबका चिरंतन निवास है, दुख से दूर होने का एक ही रास्ता है, एक ही घर है, एक ही स्थान है, वो भगवान के चरण। एको न बुझीनु प्रभु तुम्हारा चरण, अशोक अभया अमृत पूर्ण सर्वखान। आपका जो चरण कमल है भगवान, अशोक यानी वहाँ पर कुछ दुख नहीं है, अभय कोई भय नहीं है, अमृत यानी वहाँ पर जन्म मृत्यु का कोई चक्र नहीं है, आनंद ही आनंद है। ऐसे चरणों में दुर्गा देवी कहती है, ये चरण लागी शिवत्व लाभिला, शंकर भगवान को शंकर भगवान का पोजीशन मिला ये चरणों की वजह से, दुर्गा देवी को दुर्गा देवी का पोस्ट मिला इनके चरणों की वजह से, गणेश जी गणेश जी बने इनके चरणों की शरण लेने से, तो ये चरण मुझे भी चाहिए, मैं भी उनकी शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। ऐसे दुर्गा देवी हमको संदेश दे रही है, और हम लोग बेकार में लंबी लिस्ट लेके खड़े हैं उनके सामने, ये दो वो दो ये दो वो दो, नहीं मिलेगा, जो लिखा है वही मिलेगा। अगर समझो आपके अंदर लिखा हुआ है और आप मांग भी रहे हो, अगर आपकी फाइल में लिखा है कि आपको अच्छा रिच पति मिलने वाला है, और आप जाके साइमल्टेनियसली मांग भी करो देवी मुझे अच्छा पति मिलने दो, और समझो आपके कर्म के अनुसार आपको अच्छा पति मिल गया, आपको लगेगा मैंने देवी से प्रार्थना किया ना तो मुझे अच्छा पति मिल गया, अभी आगे जाके गाड़ी की मांग भी उनसे ही करूँगी। ये कोइंसिडेंस है बाय द वे, आपके फाइल में था आपको मिला, आपको लगा देवी का प्रार्थना किया, देवी बहुत जागरूक है, नवरात्रि में प्रार्थना किया था, दिसंबर में शादी होगी, ये सब कोइंसिडेंस बोलते योगा योग। इसलिए बेफजूल की टाइम पास मत करना देवी के पास जाके, 50 चीज़ें मत मांगना उनके पास जाकर, केवल सन्मति अच्छी बुद्धि सद्विचार और भगवान की भक्ति मांगना, बस वो जरूर दे सकती है वो, क्योंकि अगर सद्विचार कोई मांगता है तो देने में क्या डिफिकल्टी है, और मुझे गाइड करो, गाइड को क्यों नहीं करेगा आपको गाइड, अच्छे विचार से कोई गाइडेंस मांगता है तो देंगे आप गाइड उसको, और आप आपको कोई पूछेगा कि वो डिप्लोमा ऑप्थेल्मोलॉजी कैसे करते हैं तो आपको गाइड करेंगे, ऐसे ऐसे अप्लाई करना हो तो यहाँ करो, अप्लाई यहाँ पर अप्लाई करो, फिर आपको मिलेगा ये कॉलेज अच्छा है ये अच्छा नहीं है, गाइड करेंगे, उसमें क्या नुकसान नहीं है आपको कुछ। लेकिन बोलेंगे मेरा ऑपरेशन फ्री कर दो, इम्पोर्टेड लेंस डालो, तो शायद बोलेंगे नहीं हो सकता है, वो जो कर सकते हैं वो करेंगे, नहीं करेंगे नहीं हो सकता कैसे करेंगे। इसलिए 9 दिन भगवान से प्रार्थना करो, देवी से प्रार्थना करो कि हमको भगवान के चरणों की भक्ति दो। सब देवता एक्चुअली उसी में अच्छा लगता है उनको सबको, अगर भगवान के चरण में कोई आने को इच्छा रखता है तो शंकर जी गणेश जी देवी जी सरस्वती सब लोग आपको कृपा करेंगे आपके ऊपर, क्योंकि सब लोग भगवान के भक्त हैं, सबके भगवान के मिनिस्ट्री के मेंबर हैं सब लोग, भगवान के सब मिनिस्टर सही है, एम्पावर्ड शक्ति दिया भगवान ने उनको, लेकिन मया अध्यक्षेण उनके नियंत्रक भगवान हैं सब, उनको जितना पावर दिया है। वायु को जाके बोलेंगे अच्छी वर्षा होनी चाहिए, बाबा हमारे गांव में दुष्काल पड़ गया है, वायुदेव कृपा करके अच्छी वर्षा होने दो, तो बोलेगा रॉन्ग नंबर, वैसे हमारा कंडीशन हमको पता नहीं है, वो गांव में वागोबा का मंदिर होता है, पत्थर होता है लाल रंग का, हाँ क्या क्या नाम होता है, मसोबा वागोबा, सबको सिंदूर लगा के उसकी पूजा करते हैं और सब कुछ मांगते रहते हैं, है ना, अज्ञान का फल है वो, अज्ञान इज अ नो, क्या पोजीशन किसकी है नॉलेज नहीं है, एक्चुअल नॉलेज नहीं है, सत्य के बारे में ज्ञान नहीं है। यहाँ पर भगवान ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं, भगवान स्वयं ज्ञान दे रहे हैं कि ये माया देवी कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा रिश्ता क्या है, वो मेरी कैसी सेवा करती है, मेरे पावर में क्या क्या काम करती है, सब समझा दिया उन्होंने, फिर भी हम लोग नहीं समझ रहे हैं। तो आइए इस भगवान के देवी जो है दुर्गा देवी, इसके अलग अलग नाम है, उसके 9 दिन कल से शुरू हो रहे हैं, बहुत पवित्र माना गया है 9 दिनों को, इसमें आप शुभ कार्य कर सकते हैं, नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, नया खरीदी कर सकते हैं, तो नई गाड़ी खरीदना है आपको, कुछ करना है अच्छा कार्य करना है, गृह प्रवेश करना है, तो ये बहुत अच्छा समय है, शुभ समय है, ऑस्पिशियस। पिछले 15 दिन में कुछ नहीं करते हैं, कोई नया काम नहीं करते हैं, खाली प्रार्थना करते हैं, श्रद्धा से भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं जो गुजरे हुए हैं, अभी कल से फिर अच्छे कार्य शुरू करेंगे, वो जो भी अच्छा करना है, कोई नया कार्य शुरू करना है तो ये समय बहुत अच्छा है। अभी आप बोलेंगे नया कार्य क्या करूं, नया कार्य ये करो कि मैंने अब तक अभी बहुत दिन से बाइबल नहीं पढ़ा, अभी मैं कल से बाइबल पढ़ना शुरू करूंगी, भगवद गीता बहुत दिन से नहीं पढ़ी, अभी कल से वापस शुरू करूंगी, ये नया कार्य है, अच्छा कार्य है। मैंने बहुत दिन जप करना बंद कर दिया था, कल से वापस मैं जप करना शुरू करूंगा। दिस इज व्हाट इज अच्छे संकल्प का मतलब ये है। हमने संकल्प किया था ना, सबको याद है ना कि सब लोग संकल्प भूल गए, बहुत दिनों के प्रभु याद ही नहीं आता क्या संकल्प किया था। नहीं, अभी कल से उस संकल्प को दोहराओ, याद करो, उसको रिवाइज करो और देवी से प्रार्थना करो कि जो हमने संकल्प किए थे हमारे कल्याण के लिए, उसको मनाने, उसको क्या कहते हैं, उसको पालन करने के लिए आप उनको शक्ति दो। तो देवी शक्ति देगी, वो उसके अधिकार में है। शी विल गिव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है इसके ऊपर किसी का, एनी क्वेश्चन? अगर बहुत लंबी लिस्ट बना के रखी है एप्लीकेशन की, उसको डिलीट मार दो आज और नया लिस्ट बना दो, देवी के सामने नई लिस्ट बना दो और देवी को खुशी दो। देवी को ऐसा कुछ मांग के कष्ट मत दो जो वो नहीं कर सकती है, वही मांगो जो वो दे सकती है, खुशी से आपको दे सकती है और प्रसन्न होगी आपके ऊपर, ऐसा कार्य करो, है ना। तो किसी से काम करवाना है तो उसको खुश तो करना पड़ेगा ना पहले, तो वो खुश होती है आपके भक्ति से, तो फिर वो खुश होगी तो आप पर कृपा करेगी। और कृपा का मतलब ये नहीं कि धन आएगा, संपत्ति आएगी, अधिकार आएगा, पद आएगा। धन का कृपा का मतलब है भगवान की भक्ति। जैसे एक भक्त ने शंकर जी से प्रसन्न किया और शंकर जी बोले मैं दर्शन दे रहा हूँ आपको, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो बोलते मैंने आपसे कुछ मांग के प्रार्थना नहीं किया था, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। तो शंकर जी बोलते नहीं नहीं, मैं आया हूँ तो आपको कुछ देना ही पड़ेगा, मुझे हमारा नियम है, हम लोग आते हैं तो कुछ वरदान देके जाते, आपको वरदान मांगना ही होगा। बोलते नहीं, मैंने कुछ अपेक्षा की नहीं थी, मैं तो आपका निरपेक्ष भजन कर रहा था। नहीं नहीं, आपको मांगना ही होगा। तो फिर वो ब्राह्मण ने शिव जी से क्या मांगा मालूम है आपको? वो ब्राह्मण ने शिव जी से मांगा कि आपको सबसे प्रिय क्या है वो मुझे दे दो। तो शिव जी आनंद से नाचने लगे कि आज तक किसी भक्त ने, मेरे पास लाइन लगाने वाले किसी भक्त ने मुझे जो अच्छा लगता है वो मांगा नहीं कभी आज तक, यही वो ये दो वो दो ऐसे ही मांगते रहे। तो मुझसे सबसे प्रिय क्या है? भगवान कृष्ण है। तो उसने उसको भगवान कृष्ण भेज दिए और कहे अभी आज से उनकी पूजा करना, ये मेरी पूजा के बराबर ही है, मैं इसमें मेरी पूजा मान लूँगा। तब से वो व्यक्ति राधा वल्लभ जी भी वृंदावन में उनकी पूजा करने लगा और आज भी राधा वल्लभ जी वृंदावन में विराजमान है। वो शिव जी की भेंट है उनको, किसको पता है? शिव जी ने उनको कृष्ण दिए, सबसे मेरे प्रिय प्राण इष्ट जो है वो कृष्ण है, वो ले लो। वो दे दिए उसको, आत्मदेव ब्राह्मण का नाम था। तो नृत्य करने लगे आनंद से कि आज तक किसी ने नहीं मांगा। अब लोग बाकी फालतू चीज़ मांगते रहते हैं, इतने मेरे दिल के चीज़ को मांगा, ले लो, आई विल गिव यू। आप लोग भी वैसे ही मांगो और देवी को खुश करो, खाली उससे ऐसा छीनो मत, ये दो वो दो, ये दो वो दो, ये दो वो दो, उस पर प्रेम नहीं है आपको, खाली वो चीज़ दे रही है उस पर प्रेम है, वैसा मत करो। देने वाले को प्रसन्न करो और देने वाले से ऐसा चीज़ लो जो सबको देते नहीं है, कुछ सिलेक्टेड लोगों को देते हैं, वो वस्तु मांगो उनसे जो देश दे भी सकते हैं और जिस पर प्रेम करते हैं उनको देते हैं, ऐसी वस्तु मांगो, फिर वो खुशी से आपको वो वस्तु देगी, कृपा के साथ प्रेम के साथ देंगी आपको वस्तु। तब आपका जीवन आपका धन्य होगा, आपकी प्रेयर धन्य हो जाएगी, या एवरीथिंग बी सक्सेसफुल, ऑल योर प्रेयर्स, ऑल योर डिवोशन, ऑल योर लव, एवरीथिंग इज सक्सेसफुल व्हेन यू प्लीज द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।